नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। एक सरकारी समिति हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं की जांच करेगी। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के 5 घाटी जिलों से 328 अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव, यरूशलम और तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई। लंदन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 27 वर्षों बाद अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। और आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में आर्य बोर से और अर्जुन बाबूता की जोड़ी के पदक के साथ भारत ने चौथा स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया है कि नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
We have circulated the order of the high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, DG DGCA, Special Director from IB and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services.
श्री नायडू ने कहा कि समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश सुझाएगी। समिति को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। मृतकों की पहचान करने और पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं।
The DNA testing is happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. So the government of Gujarat is coordinating with that. They are on the ground since the time of the crash and they have been facilitating with all the efforts, all the measures that are required. So once the DNA testing is confirmed, the bodies are being given to the respected families. The documentation and the procedure needs to be followed. We are ensuring that there doesn't be any lapse in the process or the protocol that needs to be followed.
एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों के परिजन और घायलों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल 25-25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये कंपनी द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त है। इसमें कहा गया है कि इस कठिन समय में देखभाल और सहायता के लिए एयर इंडिया हर संभव प्रयास कर रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में समीक्षा बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज रूम का भी दौरा किया जहां मृतकों के शव रखे गए हैं। इस बीच अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डीएनए मिलान की प्रक्रिया जारी है। सिविल अस्पताल के अधिकारियों ने डीएनए नमूनों के आधार पर अब तक 9 मृतकों की पहचान की है। घटना में विमान में सवार 241 लोगों और मेडिकल छात्रों सहित 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इससे पहले दिन में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में गुजरात फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स टीम के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने डीएनए परीक्षण प्रक्रिया की भी समीक्षा की। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिविल अस्पताल का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्घटना की जांच चल रही है और जांच में कई एजेंसियां शामिल हो गई हैं।
दमकल की टीमों ने आज एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल के पिछले हिस्से से एक और शव बरामद किया है जो एयर होस्टेस का होने का संदेह है। बीजे मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल के पास स्थित अन्य छात्रावासों को खाली करने का आदेश दिया है और डॉक्टरों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गांधीनगर के फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय के निदेशक HP संघवी ने बताया कि दुर्घटना के कारण उत्पन्न उच्च तापमान की वजह से DNA मैचिंग की प्रक्रिया जटिल हुई है, लेकिन त्वरित और सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। इस बीच शवों को उनके परिजनों को सौंपने के लिए सिविल अस्पताल में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस काम के लिए 190 से अधिक एम्बुलेंस और डॉक्टर सहायकों ड्राइवर समेत 590 से अधिक लोगों को तैनात किया गया है। सिविल अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि शवों को ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया है कि वर्तमान में अस्पताल में करीब 8 घायलों का इलाज चल रहा है और उनमें से एक की हालत गंभीर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के एक दल ने कल रात अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जिलों के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस CAPF सेना की एक संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक और युद्ध सामग्री के साथ 328 अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। मणिपुर पुलिस ने नागरिकों से पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने तथा अवैध हथियारों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के निमंत्रण पर साइप्रस पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा साइप्रस से शुरू होगी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइप्रस कश्मीर सीमा पार आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत के रुख का लगातार समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। शिखर सम्मेलन में श्री मोदी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा का अंतिम पड़ाव क्रोएशिया होगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। क्रोएशिया को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में संभावित भागीदार के रूप में देखा जा रहा है और ये यात्रा भारत क्रोएशिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राजा द्रोई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के आज से शुरू हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को गलत बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गलतियां होती हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनकी पुनरावृत्ति न हो। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक पहल के तहत 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को सर्वसम्मति से प्रतिध्वनित किया है। पटना में संवाददाताओं से बात करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि बैठकों के दौरान विभिन्न देशों के विदेशी नेताओं, थिंक टैंकों और अन्य लोगों ने एक स्वर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के समक्ष पहलगाम हमले की निंदा की।
हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की।
भारतीय सेना में आज 419 नए युवा अधिकारी शामिल हुए। हमारी संवाददाता ने बताया कि उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में इस भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया।
आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित इस परेड में कुल 451 जेंटलमैन कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 32 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूर्ण कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसांथा रॉड्रिगो ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर किया। इस अवसर पर युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर अन्नी नेहरा को प्रदान किया गया।
मैंने भारतीय सेना अकादमी में टोटल 11 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स, अपने इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स जो स्कूल में रहे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और नेशनल डिफेंस अकेडमी में जो रहे और मेरे कोर्समेट्स, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
ऑर्डर ऑफ मेरिट में रौनित रंजन नायक पहले स्थान पर रहे और उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अन्नी नेहरा दूसरे स्थान पर रहे जबकि अनुराग वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक प्राप्त किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले तल अवीव, यरूशलम और तेहरान में किए गए। इसराइल के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए और 10 से अधिक घायल हो गए। इसराइल की सेना ने कहा है कि ईरान के मिसाइल हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए हैं। दूसरी ओर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने इसराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि इसराइल ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान लगाया है। इस बीच उत्तर पश्चिम भारत से आने वाले दिनों में लू की स्थिति में भी कमी आएगी। मौसम विभाग ने आज भीषण लू के चलते राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि आज भी इन इलाकों में रात के समय गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में अत्यधिक बारिश के चलते रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अब खेल खबरें। म्यूनिख में आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता की भारतीय जोड़ी ने आज ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। ये मौजूदा विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण और कुल 4th पदक है। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच के आज 4th दिन उसने 5 विकेट से जीत हासिल की। एडन मार्करम ने सबसे अधिक 136 रन बनाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। एक सरकारी समिति हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं की जांच करेगी। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के 5 घाटी जिलों से 328 अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव, यरूशलम और तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। लंदन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 27 वर्षों बाद अपना पहला ICC खिताब जीता। और ISSF विश्व कप निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में आर्य बोरसे और अर्जुन बबूता की जोड़ी के पदक के साथ भारत ने 4th स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।